अभिमन्यु ने पूरी कोशिश की थी कि वो आशुतोष और काजल को उनकी बेटी से मिलवा सके, लेकिन बीच में तृप्ति आ गई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि तृप्ति की साजिश कामयाब हो जाएगी। अभिमन्यु के आने तक तृप्ति ने आशिका को आकाश के हवाले कर दिया था। उन सब की आंखों के सामने आकाश प्राइवेट जेट में आशिका को अपने साथ ले गया, तो वहीं सबूत पेश करने के बाद भी आशुतोष और काजल को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि आशिका उनकी बेटी हो सकती है। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि ये तृप्ति की किसी तरह की साजिश है। ऊपर से तृप्ति ने ये तक कह दिया कि आशिका उसके और आशुतोष की बेटी है। इस बीच अभिमान वहां पहुंच गया था। उसने यही बताया कि आशिका अपनी आंखों पर लेंसेज लगाकर रखती थी, शायद यही वजह थी कि वो अपनी आंखें किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। अभिमान के चेहरे पर गहरी लाचारी के भाव थे और वो आसमान की तरफ देख रहा था, जहां उसे वो प्राइवेट जेट किसी चिड़िया जितना छोटा दिखाई दे रहा था। जल्द ही वो उसकी आंखों से दूर हो गया। अभिमान को बहुत बुरा लग रहा था कि आशिका उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन जैसे ही वो उसकी आंखों से पूरी तरह गायब हुई, अभिमान की आंखों में गुस्सा भर गया था। उसने तृप्ति की तरफ देखा और उसकी गर्दन पकड़ ली थी। तृप्ति समझ तक नहीं पाई कि आखिर अभिमान क्या करने का सोच रहा है।
क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, छोड़ो मुझे, मिस्टर राजवंश, मुझे इससे बचाइए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आशिका मेरे और आशुतोष की,
तृप्ति गिड़गिड़ाते हुए बोल रही थी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अभिमान ने पूरी निर्दयता के साथ उसका सिर पास की दीवार पर जोर से टकरा दिया था। तृप्ति दर्द के मारे जोर से चिल्लाई, तो तुम्हारी और मिस्टर सिंघानिया की बेटी है वो? अच्छा, अभिमान दांत भींचते हुए बोला और उसने एक बार फिर तृप्ति का सिर दीवार से दे मारा। अभिमन्यु चाहता तो आराम से अभिमान को रोक सकता था, लेकिन वो हाथ बांधकर वहां चुपचाप खड़ा था। शायद यही तरीका था जिसे तृप्ति के मुंह से सच उगलवाया जा सकता था। किसी भी औरत पर हाथ उठाने से पहले अभिमन्यु के उसूल भले ही उसके आगे आ जाते थे, लेकिन वो अभिमान था और उसने एक बार फिर आशिका को अपनी आंखों के सामने खुद से दूर जाते हुए देखा था। इस वक्त उसका गुस्सा उसके वश के बाहर हो गया था। पृथ्वी ने आगे बढ़कर अभिमान को रोकना चाहा, पर अभिमन्यु ने उसे इशारे से शांत रहने के लिए कहा। आशुतोष और काजल को तृप्ति पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी, लेकिन अगर अभिमान इसी तरह उसे मारते रहने वाला था तो उसका सिर फट सकता था। मिस्टर राजवंश, रोकिए अभिमान को, तृप्ति मर गई तो उस पर क्रिमिनल केस हो सकता है, आशुतोष ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा। मैं कुछ नहीं कर सकता मिस्टर सिंघानिया, अभिमन्यु ने अपने दोनों हाथ हवा में किए और सबसे पल्ला झाड़ते हुए कहा। उसने अपनी अभी अभी अपनी पत्नी को खुद से दूर होते देखा है, वो भी इस औरत की वजह से। अफसोस तो मुझे इस बात का हो रहा है कि वो लड़की आपकी भी बेटी थी, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर बिल्कुल भी अफसोस के भाव नहीं है। खैर, कोई बात नहीं, जल्द ही वो समय भी आएगा जब आपको इन सब का पछतावा होगा, लेकिन तब आपके पास पछताने के लिए कुछ नहीं रहेगा। काजल ने अभिमन्यु की बात पर आंखें घुमाई। उसने आशुतोष की तरफ देखकर गहरी सांस लेकर कहा, इन्हें जो करना है करने दीजिए, हम यहाँ से चलते हैं। वैसे भी हमारा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद है कि आप आगे से हर किसी की बातों में नहीं आएंगे, सिर्फ इसलिए कि वो हमारी बेटी का नाम लेकर आपको बुला रहा हो। आशुतोष ने उसकी बात पर हामी भरी और वहां से जाने को हुए। जाने से पहले उन्होंने अभिमान और तृप्ति की तरफ देखा, लेकिन उनकी बातों को सुनकर उन दोनों के कदम ना चाहते हुए भी वहां पर रुक गए थे। वहीं अभिमान का उनकी बातों की तरफ ध्यान तक नहीं था। उसने तृप्ति को बुरी तरह घायल कर दिया था और तृप्ति के सिर से खून बह रहा था। अभिमान ने तृप्ति का गला पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और दांत पीसते हुए बोला, तो तुम्हारा कहना है कि वो तुम्हारे और मिस्टर सिंघानिया की बेटी है? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम मिस्टर सिंघानिया से जुड़ी हर छोटी चीज के लिए कितनी ऑब्सेस्ड हो। अगर आशिका तुम्हारी बेटी होती तो तुम उसे कभी आकाश राजवंश को नहीं बेचती। काजल ने एक दूसरे की तरफ हैरानी भरी निगाहों से देखा। वे दोनों साथ में तुरंत उनके पास गए। काजल ने अभिमान से पूछा, ये क्या कह रहे हो तुम? आखिर तृप्ति अपनी बेटी को तुम्हारे डैड को क्यों बेचेगी? मिस्टर आकाश राजवंश बहुत ही इज्जतदार इंसान है। अभिमान पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में था। ऊपर से काजल की बातें आग में घी डालने का काम कर रही थी। अभिमान ने जलती निगाहों से काजल की तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, कौन सा इज्जतदार इंसान एक लड़की को जबरदस्ती जेट में बिठाकर इस तरफ लेकर जाता है, खासकर वो लड़की जो उसके बेटे की वाइफ है। यकीन नहीं होता कि आप इतनी बेवकूफ है मिसेस सिंघानिया, पर आपका भी दोष नहीं है। आपको पहले भी आशी की गलतियां दिखाई नहीं दी, तो फिर एक अनजान इंसान की गलतियों को क्यों देखेंगी आप? जुबान संभाल कर बात करो अभिमान। आशुतोष अभिमान से गुस्सा हो गए, क्योंकि उसने काजल से काफी बदतमीजी से बात की थी और उसने उन्हें बेवकूफ तक कह दिया था। अभिमन्यु ने उन दोनों को अनसुना किया और तृप्ति की तरफ देखा। वो बोला, मुझे इनसे बहस करने का टाइम नहीं है और ना ही मैं इन लोगों की तरह अंधा हूँ जो अपने सामने सच होने के बावजूद ना देख सकूं। आशिका तुम्हारी बेटी हो ही नहीं सकती है। मुझे उसकी लाइफ के बारे में उसने ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन वो चीज बताई है जो एक माँ अपनी बेटी के साथ कभी नहीं करती। तुमने उसे घर से निकाल दिया था। तुम्हारी सौतेरी बेटी के फ्लॉप बिजनेस के लिए तुमने आकाश राजवंश से लोन लिया और फिर जब उसे चुकाने की बारी आई तो बदले में आशिका को उनके हवाले कर दिया। कौन सी माँ ऐसा करती है? सलीना भी मौजूद थी ना वहां पर, वो तुम्हारी सौतेली बेटी है और देखा जाए तो सब कुछ उसी का किया धरा था। फिर तुमने उसे आकाश राजवंश के हवाले क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं मजबूर हो गई थी। उन्हें आशिका ही पसंद आई थी, और आशिका को मैंने इसलिए घर से निकाला था क्योंकि मैं उससे नफरत करती थी। उसके पिता ने मुझे नहीं अपनाया, तृप्ति ने बहाने बनाते हुए कहा। वो अभी भी यही साबित करने पर लगी हुई थी कि आशिका उसके और आशुतोष की बेटी है। अभिमान जोर से हंसा, लेकिन उसकी ये हंसी काफी ठंडी थी और खतरनाक थी। उसने तृप्ति की बात पूरी होते ही उसके गाल जोरदार थप्पड़ लगाया। ठीक है, फिर एक डीएनए टेस्ट और करवाते हैं जो तुम्हारा और आशिका का होगा। आशिका भले ही यहाँ पर ना मौजूद हो, लेकिन उसके हेयर और टूथब्रश हमारे रूम में आराम से मिल जाएंगे। अगर आशिका तुम्हारी बेटी नहीं निकली तो फिर मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा वो तुम सोच भी नहीं सकती, अभिमान बोला और उसने बेरहमी से तृप्ति के काफी सारे बालों को खींचकर बाहर निकाल लिया था। तृप्ति जोर से दर्द से चिल्लाई। अभिमान वहां से जाने लगा, तभी तृप्ति पीछे से तेज आवाज में बोली, रुको रुको, तुम ये नहीं कर सकते। बिना सब्जेक्ट के कंसेंट के तुम हमारा डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकते हो। वो दौड़कर उसके पीछे आ रही थी। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोकोगी, अभिमान ने सिर हिलाकर कहा और तृप्ति को दूर धकेल दिया था। तृप्ति वहां से भाग जाना चाहती थी। उसे यही लग रहा था कि इन सबसे बचने का यही तरीका था कि वो सलीना के साथ देश छोड़ देगी, लेकिन सब कुछ अब बहुत मुश्किल हो गया था। आकाश जो चाहता था उसे वो मिल गया था, लेकिन अब वो बुरी तरह मुसीबत में फंस गई थी। आज नहीं तो कल ये साबित हो ही जाता कि आशिका उसकी बेटी नहीं है, लेकिन उसके बाद उसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला था। तृप्ति ने अपना थूक निकला और बोली, अच्छा ठीक है, मैं सच बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम लोग मुझे यहाँ से जाने दोगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी हमारे साथ किसी तरह की डील करने के हालात में हो तृप्ति बजाज, अभिमन्यु ने तंज भरे लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। अभी तो तुम्हारा स्पेशल ट्रीटमेंट बाकी है।
तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम मुझे मारने का कहकर या डरा धमका कर ये कहने पर मजबूर कर सकते हो कि आशिका आशुतोष और काजल की बेटी है? मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी क्योंकि ये सच नहीं है, तृप्ति ने सिर हिलाकर कहा। वो मरने की हालत में थी, लेकिन फिर भी अभी भी झूठ बोल रही थी। आशुतोष और काजल को उसका चेहरा तक बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और जैसे जैसे वो बार बार ये कह रही थी कि आशिका आशुतोष और उसकी बेटी है, उन दोनों को उससे और ज्यादा घिना रही थी। अब हम ये और नहीं झेल सकते हैं, तुम लोग अपना फैमिली मैटर खुद निपटाओ। बाकी उम्मीद है मिस्टर राजवंश कि अब हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी, आशुतोष ने अभिमन्यु की तरफ देखकर बिना किसी भाव के कहा। अभिमन्यु और पृथ्वी दोनों को ही अफसोस हो रहा था कि इतने सबूत सामने होने के बावजूद भी उन्हें आशिका के बजाय तृप्ति की बातों पर यकीन था। आशुतोष और काजल उस ग्राम से बाहर निकल गए थे। वहीं अभिमन्यु ने अफसोस भरे लहजे में धीरे से बड़बड़ाकर कहा, कुछ पेरेंट्स सच में बच्चों के लायक नहीं होते हैं। अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए थे। आशुतोष और काजल तो आशिका की सच्चाई नहीं जानते थे, इस वजह से उसे ठुकरा रहे थे, जबकि उसके माँ बाप ने तो सब सच जानते हुए भी उसे कभी नहीं अपनाया था। अभिमन्यु ने तुरंत ही खुद को संभाला और पृथ्वी की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा, तुम्हें पता है तृप्ति बजाज के साथ क्या करना है? पृथ्वी ने हां में सिर हिला दिया था। वहीं तृप्ति के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए थे। वो जल्दी से चिल्लाकर बोली, तो तुम लोग मेरे साथ क्या करने का सोच रहे हो? देखो, इस देश में कानून और पुलिस नाम की भी चीज है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तृप्ति बुरी तरह घबरा गई थी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। पृथ्वी ने तृप्ति को गन पॉइंट पर ले लिया था और वो अभिमन्यु के इस तरफ आने का इंतजार करने लगा, जो फिलहाल अभिमान के पास जा रहा था। अभिमान की आंखों में आंसू थे। किसी और को आशिका के सच पर यकीन हो या ना हो, लेकिन अभिमान को अच्छे से था। उसे किसी डीएनए टेस्ट या सबूत की भी जरूरत नहीं थी। बस अगर अभिमन्यु ने यह कहा था कि आशिका आशुतोष और काजल की बेटी है, तो वो बिना किसी सबूत के भी ये मान सकता था। जैसे ही अभिमन्यु अभिमान के पास आया, अभिमान उनके गले लग गया था। वो भारी आवाज में बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे ढूंढूंगा। वो हमेशा से मेरे पास थी और मैं उसे पहचान नहीं पाया। जो भी हो, मैं उसका सच साबित करके रहूंगा। मैं इस तरह लोगों को उस पर उंगली नहीं उठाने दूंगा। ये हक मैं उसके पेरेंट्स को भी नहीं देता। अभिमान का प्यार और उसका विश्वास देखकर अभिमन्यु के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी और उसे राहत महसूस हो रही थी। उसने प्यार से अभिमान की पीठ सहलाई और उसे अलग होकर बोला, टेस्ट करवा लेना। बाकी मुझे नहीं लगता कि मिस्टर और मिसेस सिंघानिया अब इस लायक है कि आशिका उनके पास जाए। अभिमान भी अभिमन्यु की बात पर पूरी तरह सहमत था। उसने बिना किसी सवाल के उसकी बात पर हामी भर दी थी। अभिमान काफी मायूस नजर आ रहा था। उसकी चिंता और फिक्र को अभिमन्यु अच्छे से समझ सकता था। आकाश की लोकेशन निकालना इतना आसान नहीं था। ऊपर से वो प्राइवेट जेट में आशिका को लेकर गया था, जिसका पीछा करना भी मुश्किल था। चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे और हम अपनी जी जान लगा देंगे आशिका को वापस लाने में, अभिमन्यु ने अभिमान के कंधे पर हाथ रखकर नरम लहजे में कहा। देखा जाए तो अच्छा है वो यहाँ पर नहीं है, वरना ये सब देखकर उसे बहुत तकलीफ होगी। पर मुझे डर लग रहा है कि मिस्टर राजवंश उसके साथ कुछ गलत न कर दें, वो बहुत घटिया इंसान है, अभिमान ने परेशान लहजे में कहा। आशिका खुद को बचाना जानती है, अभिमन्यु बोला। वे दोनों बातें कर रहे थे, तभी अचानक उनका ध्यान तृप्ति की तरफ गया और उन दोनों के चेहरे पर ही गहरी हैरानी के भाव उभर आए थे।
काजल अचानक दौड़ते हुए तृप्ति के पास आई थी और उसके पीछे आशुतोष भी थे। काजल ने तृप्ति के कुर्ते का जैकेट पकड़ा और लड़खड़ाती आवाज में कहा, मेरी अंशिका के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो, तुमने उसे कहाँ भेजा है? मेरी बेटी को मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसकी बातें सुनकर अभिमान और अभिमन्यु दोनों ने एक दूसरे की तरफ उलझन भरी निगाहों से देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर 5-7 मिनट में ऐसा क्या हो गया था जो काजल इस तरह रोती हुई तृप्ति के सामने गिड़गिड़ा रही थी, जिसने कुछ देर पहले इतने सबूत होने के बावजूद भी ये मानने से इनकार कर दिया था कि आशिका उनकी बेटी है। आखिर ऐसा क्या हो गया था जो अब अचानक उन्हें इस बात पर यकीन हो गया कि अभिमन्यु झूठ नहीं बोल रहा था और ना ही उसके पेश किए गए सबूत छूटे थे। गेम के लिए सॉरी, और इसके लिए मैंने बड़ा पार्ट भी दिया है और सच भी खोल दिया। अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ होगा जो अचानक काजल और आशुतोष को सच पर यकीन हो गया? चलिए समीक्षा में बताइएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ।